श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादः सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लास्ट वीक हमने कंप्लीट किया था भगवान कपिल की शिक्षाएं कंप्लीट हो गई थी और कपिल की शिक्षाएं कंप्लीट होने के बाद मदर देवहूति भगवान से प्रार्थना करते हैं। देवहूति इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। प्रार्थना हमने लास्ट वीक कंप्लीट नहीं की थी शायद, तो देवहूति की प्रार्थना इस प्रकार से है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के बावजूद आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। चूंकि पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके गर्भ में है, आप पूरे ब्रह्मांड के जनक हैं, तो ये बहुत आश्चर्यजनक है कि आपने मुझे माँ के रूप में स्वीकार किया। परंतु जब आप किसी के प्रति करुणा करते हैं और अपनी लीला उसको प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। और साथ में मदर देव होती बताती हैं कि एक्चुअली आपकी सारी लीलाएं अचरज की हैं, क्योंकि जब आप संसार का विनाश करते हैं उस समय आप इसी तरह से बनियान जो बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के पत्ते के ऊपर आप लेट जाते हैं और ये लीला एक्चुअली बहुत फेमस है। मार्कंडेय ऋषि ने भी भगवान की इस लीला के दर्शन किए थे। इस लीला में इस प्रकार से होता है कि मार्कंडेय ऋषि को एक बार इच्छा होती है भगवान की माया शक्ति को देखने की, और साथ साथ उनकी ये भी इच्छा होती है कि किस प्रकार से वो प्रलय और सृजन को देख सकें। तो एक बार जब पूरे संसार का प्रलय होता है, तब मार्कंडेय ऋषि के साथ इस प्रकार से होता है कि वो प्रलय के जल के बीच में भगवान भगवान विष्णु को एक छोटे से बालक के रूप में देखते हैं, और भगवान जो है एक छोटे से बालक के रूप में अपने अपने पैर के अंगूठे को चूसते रहते हैं बरगद के पत्ती के ऊपर। तो उस सीन को देवहूति मदर ही देवहूति याद कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आप तो पूरी तरह से परफेक्ट हैं, इसलिए जो भी आप कुछ भी कार्य करने में समर्थ हैं। और फिर देवहूति मदर देवहूति बताते हैं कि चाहे व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो पतित हो, चाहे किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, चाहे उसने वैदिक वैदिक शुद्धि प्राप्त की गई हो या नहीं की हो, परंतु अगर कोई आपके होली नेम को जप करता है, एक बार भी आपके नाम को जप करता है और आपकी ग्लोरीज को सुनता है, और साथ साथ आपको प्रणाम करता है, आपकी सेवा में लगता है, तो वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। दैट मीन्स भगवान के नाम लेना और भगवान की सेवा करना, यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, सेवा करता है, दैट मीन्स वो संसार के सारे यज्ञों को कर चुका है, संसार के सभी तीर्थ स्थल का भ्रमण कर चुका है, सभी प्रकार के पुण्य कर चुका है, सभी प्रकार के दान तपस्या सब कुछ कर चुका है। तो भगवत नाम का ये प्रभाव है, भगवान के नाम के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिकता में संपूर्ण रूप से सफल हो सकता है। और इस प्रकार से जब देवहूति अपनी माँ की प्रार्थनाएं भगवान सुनते हैं, तो भगवान उनको रिप्लाई करते हैं, बताते हैं कि हे मेरी माँ, मैंने आपको जो भी वर्णन किया है, इस आध्यात्मिक ज्ञान का जो मैंने वर्णन किया है, अगर आप उसको लाइफ टाइम फॉलो करते रहेंगे, तो आप अपने शरीर में रहते हुए भी शुद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनका हो सकता है भौतिक शरीर हो, परंतु उस भौतिक शरीर में रहते हुए भी वो पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाते हैं। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं, भक्ति की प्रोसेस फॉलो करते करते व्यक्ति भौतिक देह में रहते हुए भी आध्यात्मिक बन जाता है। इस प्रकार से बोलने के बाद भगवान कपिल ने अपनी माँ से परमिशन ली और माँ से परमिशन लेके वो घर छोड़ के जंगल में चले गए। और चूंकि उनका कार्य पूरा हो गया था इसलिए वो वहां से चले गए और देवहूति जो है वहीं पे रहती थी, कर्दम के आश्रम में ही रही। भगवान वहां से चले गए और भगवान के जाने के बाद देवहूति ने भगवत भक्ति और भगवान के ऊपर ध्यान करना प्रारंभ किया। 3 बार स्नान करती थी और धीरे धीरे उनके बाल जो है, बाल की भी ज्यादा देखभाल नहीं करती थी, धीरे धीरे उनके बाल ग्रे हो गए। उनकी तपस्या करने से उनका शरीर भी पतला हो गया। और कर्दम मुनि के आश्रम का हमने डिस्क्रिप्शन देखा था। कर्दम मुनि का आश्रम अपने आप में उसको बोला जाता है संसार के सबसे सुंदर स्थानों में सबसे सुंदर था। कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से बनाया था वो आश्रम और देवहूति के लिए ही बनाया था। बहुत बड़ा पैलेस था उसके अंदर। देवता लोग भी उसकी उनके आश्रम का जो जो महल था उसकी जो उसका जो ऐश्वर्य था उससे उनको ईर्ष्या होती थी। कर्दम मुनि के आश्रम के अंदर सोने जवाहरात के चेयर और बिस्तर इस प्रकार से बने हुए थे। दीवारें भी मार्बल और मार्बल के अंदर अलग अलग ज्वेल्स, रूबी, ये सब ज्वेल्स लगे हुए थे। चारों तरफ बहुत सुंदर गार्डन थे, अलग अलग फूल और फ्लावर के ट्रीज थे और सरस्वती नदी वहां पर बहती थी। तो ऐसे महल में रहते हुए और साथ में विद्याधर स्त्रियां देवहूति की सेवा करती थी हमेशा। कर्दम मुनि के जाने के बाद भी ये जो स्त्रियां हैं देवहूति के अटेंडेंट थी। तो इस तरह से देवहूति इतने सारे ऐश्वर्य के बीच में रहते हुए भी देवहूति ने कोई भी सुख प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। सिंपल कपड़े पहनती थी और उन हमेशा वो भगवान के ऊपर ध्यान करती थी। उनको केवल ये दुख था कि उनका पुत्र उनके पास से चला गया और ये दुख आध्यात्मिक था क्योंकि उनके पुत्र भगवान थे। तो इस प्रकार से देवहूति भगवान देव कपिल के ऊपर ध्यान करते करते उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया। भौतिक अटैचमेंट को सबसे पहले त्याग किया और उसके साथ साथ एक समय आया जब उनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध होके उन्होंने भौतिक शरीर को त्याग किया। और अपने शरीर को जब वो त्याग करके गई वो शरीर जो है मेल्ट हो गया और मेल्ट बन के वो सरस्वती नदी में मिल गया और देवहूति भगवान के परम धाम में चली गई। तो ये स्थान कपिल कर्दम मुनि का आश्रम जिसको सिद्धपाद बोला जाता है वहां पर देवहूति ने अपनी जीवन की सफलता को प्राप्त किया। और इन द मीन टाइम भगवान कपिल जब अपने माँ से उन्होंने जब लीव लिया तो उसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं और गंगा के साथ जाते 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 गंगा सागर नामक स्थान पे आते हैं। गंगा सागर स्थान अभी भी फेमस है जहाँ पे मकर संक्रांति के समय लोग गंगा सागर मेला में जाते हैं। तो गंगा सागर में भगवान कपिल देव पहुंचते हैं और वहां पे समुद्र उनको रहने का स्थान निवास करता है। गंगा सागर में आप देखेंगे अभी भी भगवान कपिल तपस्या करते हैं। भगवान कपिल के रहने का स्थान है वहां पे। वहां पे भगवान कपिल ध्यान करते हैं। वो बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा उनको पूजित होते हैं, सांख्य आचार्य। जब कभी आप गंगा सागर जाएंगे तो वहां भगवान कपिल की ध्यान स्थली में जाइएगा। अभी भी वहां पे भगवान कपिल ध्यान में बैठे हुए हैं। तो इस डिस्क्रिप्शन के साथ ये जो कर्दम मुनि का जो चैप्टर है ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसी के साथ ये कैंटो भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो चौथा कैंटो है, चौथा कैंटो प्रारंभ होता है मनु के 3 पुत्रियों का। बाकी जो 2 पुत्रियां हैं उनका डिस्क्रिप्शन आता है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन आता है दक्ष और भगवान शिव के बीच में जो विवाद हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन आता है। और स्वयंभू मनु और शत्रुपा इनकी 3 पुत्रियां थी। 3 पुत्रियों का नाम आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति की लाइफ का डिस्क्रिप्शन हमने देखा, अभी कंप्लीट किया 3रे स्कंद में जो था देवहूति और कर्दम और भगवान कपिल का डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा उनकी 2 पुत्रियां और थी। पहली पुत्री का नाम था आकुति। आकुति का विवाह उन्होंने एक ऋषि थे रुचि नाम से, उन ऋषि से आकुति का विवाह हुआ। और ये विवाह की ये कंडीशन थी कि उनका जो पुत्र पैदा होगा वो पुत्र मनु महाराज को दिया जाएगा। इस कंडीशन के साथ मनु ने विवाह किया था कि उनकी पुत्री का जो पुत्र पैदा होगा वो पुत्र उनको दे दिया जाएगा। इसके पीछे एक राज था। तो मनु को पता था कि उनकी पुत्री आकुति और रुचि जो है उनसे जो पुत्र प्राप्त होगा वो भगवान का अवतार होगा। तो इसलिए भगवान के अवतार को पालने का जो लोभ था उसके कारण उन्होंने इस कंडीशन पे विवाह किया कि आकुति के जो पुत्र यज्ञ हुए वो यज्ञ मनु को दे दिए गए, मनु ने उनका लालन पालन किया। तो मनु ने ये अनकन्वेंशनल अरेंजमेंट किया क्योंकि उनको पहले से पता था कि भगवान का अवतार उस वहां पे आने वाला है, इसलिए मनु ने उस प्रकार से क्रियाकलाप किए। और इसके बाद जब भगवान यज्ञ वहां पे आकुति के पुत्र के साथ पैदा हुए, उनके साथ एक दक्षिणा नाम से कन्या भी पैदा हुई, और ये दक्षिणा जो है ये लक्ष्मी देवी। तो मनु बहुत प्रसन्न थे क्योंकि मनु को ऐसा लग रहा था कि रुचि अगर अगर केवल एक ही पुत्र पैदा होता तो शायद रुचि उनको देने में संकोच करते, परंतु एक कन्या भी है तो वो उनको प्रदान उनको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिर भगवान यज्ञ को उन्होंने दिया, रुचि ने भगवान यज्ञ को मनु को प्रदान किया, और इवेंचुअली यज्ञ और दक्षिणा का विवाह हुआ। अब यहाँ पे एक चीज अजीब लग सकती है कि यज्ञ और दक्षिणा जो है वो दोनों के दोनों रुचि और आकुति के पुत्र हैं, तो एक तरह से भाई बहन हुए, तो उनके बीच में विवाह कैसे हुआ? तो कई लोगों को ये प्रश्न हो सकता है। इसका उत्तर ये है कि यद्यपि इस लीला में वो एक ही गर्भ से पैदा हुए, एक ही जगह से पैदा हुए, परंतु वो दोनों तो एटर्नली नित्य समय से तो वो पति पत्नी है, हर अवतार में भगवान विष्णु और लक्ष्मी। तो इस अवतार में वो किसी एक गर्भ से पैदा हुए उसका ये मतलब नहीं कि उनका जो नित्य संबंध है वो खत्म हो जाएगा। तो भगवान की लीलाओं के केस में इस प्रकार से चल सकता है क्योंकि वो विष्णु और लक्ष्मी के अलावा और किस को लक्ष्मी का विवाह विष्णु के अलावा और किसी से नहीं हो सकता है, इसलिए इस प्रकार से इस केस में चला कि यज्ञ और दक्षिणा का विवाह हुआ। और यज्ञ के 12 पुत्र हुए जिनका नाम था तुषिता। तो इवेंचुअली भगवान यज्ञ जो थे वो इंद्र की पोस्ट लेते हैं उस मनवंतर में, उनके पुत्र जो हैं वो देवता कहलाते हैं। तो ये तो एक पुत्र आकुति का डिस्क्रिप्शन है। अभी देवहूति की भी 9 कन्याएं थी, देवहूति की 9 कन्याओं में से एक अनुसुईया थी, अनुसुईया जो कि फेमस अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया, ये अनुसुईया कर्दम और देवहूति के पुत्री थी। तो इनका विवाह अत्रि मुनि से होता है और अत्रि मुनि इनको लेके पुत्र प्राप्ति के लिए एक पर्वत ऋक्ष नामक पर्वत के पास जाते हैं, और वहां पे दोनों पति पत्नी प्राणायाम के द्वारा बहुत तपस्या करते हैं। अत्रि मुनि विशेष रूप से एक पैर पे खड़े रहते हैं, 100 साल तक एक पैर पे खड़े रहते हैं और कुछ भोजन नहीं करते हैं, केवल हवा लेते हुए तपस्या करते हैं 100 साल तक। इस प्रकार से जब वो तपस्या करते हैं तो भगवान से प्रार्थना भी करते हैं साथ साथ कि हे परम नियंता, मैं आपकी शरण लेता हूँ, कृपा करके मुझ में मुझे प्रसन्न होकर एक पुत्र प्रदान करिए जो कि आपके जैसा हो। तो अत्रि मुनि को पता नहीं रहता है कि कौन भगवान है, तो वो जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो तीनों के तीनों आ जाते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार से बताते हैं कि जिसने संसार का सृजन किया है, जो संसार को मेंटेन करते हैं और जो संसार को विनाश करते हैं, वो तीनों मुझ पे प्रसन्न हो। तो ब्रह्मा जी भी आ गए, विष्णु जी भी आ गए, शंकर जी भी आ गए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अत्रि मुनि शुद्ध भक्त नहीं थे, इसलिए उनको पता नहीं था कि कौन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए वो सभी को वो इस प्रकार से बोलते हैं तो तीनों लोग आ जाते हैं, क्योंकि एक नियंता है, एक बनाने वाले हैं, एक विनाश करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों आ जाते हैं उनके आश्रम में। और आके पूछते हैं आपने किसको बुलाया था? तो अत्रि भगवान के साथ शरीर से इतनी ज्यादा रोशनी निकल गई थी, कुछ समय के लिए उनको आंख बंद करते हैं, उसके बाद अत्रि फिर उनको प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं कि हे भगवान ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव, मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए प्रार्थना की थी जो कि इस क्रिएशन के पहले एग्जिस्ट करते हैं, परंतु तो आप चूंकि आप तीनों यहाँ आ चुके हैं इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने किससे प्रार्थना की थी, और मैं अभी ये समझ रहा हूँ कि भगवान एक हैं और उन्होंने आप तीनों के रूप में अवतार लिया है इस तीनों गुणों को संभालने के लिए। तो कृपया करके मेरे ऊपर कृपा करिए और मुझे बताइए कि कौन आप में से कौन इस संसार के स्वामी है। तो ये सुन के ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों मुस्कुराने लगते हैं, और मुस्कुरा के फिर बोलते हैं कि एक्चुअली हम वही सेम पर्सन है जिस पे आप ध्यान कर रहे हैं, आपको क्या इच्छा है वो मांगिए। तो तब अत्रि मुनि फिर मांगते हैं कि हमें आपके जैसे पुत्र चाहिए। तो भगवान ब्रह्मा भी अपने एक अंश को प्रदान करते हैं, विष्णु जी भी एक अंश को प्रदान करते हैं, भगवान शिव एक अंश को प्रदान करते हैं। तो ब्रह्मा के अंश से सोमदेव जो कि चंद्र देवता है उनका जन्म होता है, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय का जन्म होता है, दत्तात्रेय जो कि बहुत फेमस है, गुजरात में फेमस है क्योंकि गुजरात के पास में गिरनार पर्वत के पास में उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिए थे कुछ क्षत्रियों को, यदुवंशियों को भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे। तो ब्रह्मा जी के अंश के रूप में सोमदेव का जन्म होता है, विष्णु के अंश के रूप में दत्तात्रेय का जन्म होता है, भगवान शिव के अंश के रूप में दुर्वासा मुनि का जन्म होता है। ये तीनों अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं। तो ये सेक्शन अच्छा है क्योंकि इस सेक्शन से पता चलता है कि अत्रि मुनि भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, और इस सेक्शन से ये भी पता चलता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो हैं वो इस संसार को चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव तीन के रूप में इस संसार में आते हैं। तो हमें सीधे भगवान कृष्ण की वर्षिप करनी चाहिए जिनके ये तीनों अवतार हैं। इस तरह से हमें ये लेसन मिलता है। इसके बाद फिर अंगिरा की पत्नी, बाकी जो नौ कन्याएं थी देवहूति की, उनमें से दूसरी कन्या थी अंगिरा की पत्नी श्रद्धा, उनसे उनसे चार पुत्रियों का और दो पुत्रों का जन्म होता है, बृहस्पति और उत्तथ्य, दो पुत्रों का जन्म होता है। बृहस्पति जो है वो अंगिरा ऋषि के पुत्र है जो कि कर्दम ऋषि, कर्दम के दामाद है, मतलब देवहूति के पुत्री के पति है, तो उनसे बृहस्पति का जन्म होता है। इसी हव्यभू, पुलस्त्य मुनि की जो वाइफ है हव्यभू, उनसे अगस्त्य का जन्म होता है और विश्वभा का जन्म होता है, और विश्वभा के वंश में हम देखते हैं रावण और कुंभकर्ण का जन्म होता है। विश्वभा मुनि की कैकसी से विवाह होता है और उससे रावण और कुंभकर्ण का जन्म होता है, और विश्वभा की पहली पत्नी से कुबेर का जन्म होता है और दूसरी पत्नी से रावण कुंभकर्ण और विभीषण तीन का जन्म होता है। तो विश्वभा इनके कुबेर और रावण और कुंभकर्ण भाई भाई थे, केवल माँ अलग थी पिता समान थे। विश्वभा की एक पत्नी से कुबेर का जन्म होता है, दूसरी पत्नी से रावण कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म होता है। इसी तरह से क्रतु की पत्नी क्रिया, उनसे 60,000 ऋषियों का जन्म होता है, और ये ऋषि सूर्य देवता के भक्त होते हैं, वालखिल्य ऋषि बोला जाता है। सूर्य देवता जब अपने रथ में भ्रमण करते हैं तो सभी के सभी ऋषि उनको ग्लोरीफाई करते हैं, वालखिल्य। इसके बाद मार्कंडेय ऋषि का विवाह उशना के साथ हुआ था, उनसे जन्म होता है शुक्राचार्य का जो कि असुरों के गुरु बनते हैं, उसना कभी उनको बोला जाता है, उनका जन्म होता है मार्कंडेय ऋषि और उसना की वाइफ से, और उसना से पुत्र के रूप में शुक्राचार्य का जन्म होता है। उसके बाद आकुति के वंश के बाद फिर दूसरे दूसरे बेटी हैं मनु की, प्रसूति, प्रसूति का विवाह होता है दक्ष के साथ, और प्रसूति और दक्ष के विवाह से बहुत सारी 16 कन्याओं का जन्म होता है, 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं को धर्म ऋषि से दिया जाता है, धर्म ऋषि से शादी की जाती है। एक कन्या की शादी अग्नि से होती है, एक की शादी पितृ पितृ पितृगणों से होती है, और सबसे छोटी जो है उनकी शादी होती है भगवान शिव से, ये सती, सबसे छोटी सती है, उनका विवाह भगवान शिव से होता है। तो ये चैप्टर एक्चुअली डिस्क्राइब करता है, मैं जस्ट एक बार फिर से रिपीट करता हूँ जिससे आप लोगों को याद रहेगा कि क्या क्या कनेक्शन है। कर्दम मुनि और देवहूति के नौ कन्याएं होती हैं, उन नौ कन्याओं का विवाह अलग अलग ऋषियों से होता है, वो डिस्क्रिप्शन अभी अभी हमने देखा। उन ऋषियों में सबसे पहले अनुसुईया थी और अत्रि थे, अनुसुईया के अत्रि जब तपस्या करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शिव आते हैं, और तीनों से एक एक पुत्र आता है, ब्रह्मा से सोमदेव, विष्णु से दत्तात्रेय और शिव से दुर्वासा। तो ये तो पहली कन्या हुई देवहूति की। उसके बाद देवहूति की वाइफ, देवहूति की पुत्री श्रद्धा का विवाह अंगिरा से होता है, अंगिरा से बृहस्पति उत्तथ्य दो का जन्म होता है, तीसरी कन्या हव्यभू, उनका विवाह होता है पुलस्त्य से, पुलस्त्य से अगस्त और विश्वभा का जन्म होता है, विश्वभा की दो पत्नियां हैं, एक पत्नी से कुबेर का जन्म होता है, दूसरी पत्नी से रावण कुंभकर्ण विभीषण का जन्म होता है। इसके बाद क्रतु की पत्नी क्रिया है जिनसे 60,000 ऋषियों का जन्म होता है, उसके बाद मार्कंडेय, और मार्कंडेय से जन्म होता है शुक्राचार्य का। और इसके बाद दक्ष का विवाह, फिर अभी आकुति का डिस्क्रिप्शन हमने देखा था, आकुति रुचि का विवाह, यज्ञ विवाह होता है जिससे यज्ञ भगवान के अवतार जन्म लेते हैं, और दूसरी कन्या जो है स्वयंभू मनु की दूसरी पुत्री प्रसूति, प्रसूति का विवाह होता है दक्ष से, और दक्ष की 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं को की शादी धर्म से होती है, एक कन्या की शादी अग्नि से होती है, एक की पितृलोक से होती है, और एक लास्ट कन्या जो है उनका विवाह सती से होता है। तो यहाँ से ये बैकग्राउंड सेट होता है, सती और भगवान शिव का स्टोरी आता है, और फिर भगवान शिव और दक्ष के बीच में जो लड़ाई हुई वो डिस्क्रिप्शन यहाँ से प्रारंभ होता है, जो कि चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय में है। तो पहला अध्याय एक्चुअली केवल डिस्क्रिप्शन है, जीनियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, किस प्रकार से किसके पुत्र कौन थे, और दूसरे अध्याय से स्टोरी प्रारंभ होती है। तो धर्म की पत्नियों में से एक पत्नी थी मूर्ति, 13 पत्नियों की शादी धर्म से हुई थी, उसमें से एक थी मूर्ति। मूर्ति से नरनारायण भगवान का जन्म हुआ है, नरनारायण ऋषि जो बद्रिकाश्रम में स्थित हैं, वो धर्म की एक पत्नी है मूर्ति, मूर्ति से उनका जन्म हुआ था। जब नरनारायण ऋषि का जन्म हुआ तो जिस प्रकार से भगवान का जन्म होता है तो पूरा संसार शोभायमान होता है, उसी प्रकार से नरनारायण ऋषि का जन्म हुआ, सभी का हृदय प्रफुल्लित हो गया, सभी दिशाएं खुशी से भर गईं, और स्वर्ग लोक से भी म्यूजिक का साउंड आ रहा था, और बहुत सारे देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं, गंधर्व वो किन्नर भी गाते हैं, अप्सराएं डांस करते हैं, और बड़े बड़े ऋषि मुनि वैदिक मंत्रों का जप करते हैं। जब भगवान का जन्म हुआ तो ब्रह्मा और दूसरे देवताओं ने प्रणाम किया, उन सभी का आशीर्वाद स्वीकार करने के बाद नरनारायण ऋषि देवताओं के ऊपर प्रेम से देखते हैं, उसके बाद वो गंधमादन पर्वत पे चले जाते हैं तपस्या के लिए, तब से अभी तक नरनारायण ऋषि वहां पे तपस्या कर रहे हैं। और दक्ष की एक और कन्या स्वाहा, स्वाहा का विवाह अग्नि से हुआ और अग्नि से उनके 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो कि देवताओं की तरफ से यज्ञ की आहुति को स्वीकार करते हैं। एक्चुअली अग्नि देवता यज्ञ की आहुति को स्वीकार करते हैं, अलग अलग देवताओं के पास लेके जाते हैं, इसलिए यज्ञ में जो भी हम वस्तु डालते हैं वो अग्नि देवता के द्वारा, अग्नि देवताओं के थ्रू सभी देवताओं के पास जाती है। तो अग्नि के ये जो 3 पुत्र थे ये उसमें अग्नि के असिस्टेंट थे, अग्नि और स्वाहा से उनका जन्म हुआ, इसलिए हम देखते हैं जब भी हम कोई यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के लास्ट में स्वाहा बोला जाता है, जब हम आहुति करते हैं तो स्वाहा बोला जाता है, क्योंकि स्वाहा जो है वो अग्नि की पत्नी है। तो अग्नि और पत्नी के विवाह, अग्नि और स्वाहा के विवाह से 3 पुत्रों का जन्म होता है, और ये 3 पुत्र यज्ञ की ऑफरिंग को स्वीकार करते हैं, और इन तीन से 45 और पुत्रों का जन्म होता है। तो ये टोटल कितने अग्नि देवता हो जाते हैं, 45 प्लस 3 प्लस 1 अग्नि देवता स्वयं, इस प्रकार से टोटल 49 फायर गॉड्स कहलाते हैं। एक ब्रह्मांड में 49 अग्नि देवता होते हैं, एक अग्नि देवता, उनके 3 पुत्र, उन 3 पुत्रों के 45 पुत्र और होते हैं, तो उनका जो वंश है वो अग्निदेव के रूप में कार्य करता है, उनकी सेवाएं अग्निदेव के समान होते हैं। दक्ष की सबसे छोटी कन्या का विवाह सती, इनका विवाह भगवान शिव से हुआ, परंतु विवाह के बाद पुत्र प्राप्ति के होने के पहले ही सती ने अपने देह का त्याग कर दिया, इसलिए उनका कोई पुत्र नहीं था। इसके पीछे परीक्षित महाराज को प्रश्न आता है कि सती ने अपने देह को क्यों त्याग किया, क्योंकि भगवान शिव की पत्नी होने के बाद भी उनको ऐसा क्या हुआ कि उनको अपने देह का त्याग करना पड़ा। तो इस प्रश्न के उत्तर में फिर स्टोरी आता है कि परीक्षित सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं सुनाना कि हालांकि भगवान शिव की कोई गलती नहीं थी, परंतु उनके ससुर जो है दक्ष, वो भगवान शिव से नाराज रहते हैं और भगवान शिव को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते थे। एक्चुअली सती ने पर्सनली भगवान शिव को चूज किया था, दक्ष की इच्छा नहीं थी कि उनका भगवान शिव से विवाह हो, क्योंकि भगवान शिव का एक्सटर्नल अपीयरेंस दक्ष को अच्छा नहीं लगता था। दक्ष इतने बड़े घर के थे और इतने बड़े राजा थे, और शंकर जी जो थे वो कभी क्रिमेटोरियम में रहते थे, शमशान घर में राख लगा के, कभी भूतों के साथ विचरण करते थे, तो शंकर जी का जो बाहरी स्वरूप था वो दक्ष को पसंद नहीं आता था, इसलिए दक्ष उनसे विवाह कराना नहीं चाहते थे, परंतु चूंकि उनकी पुत्री विवाह करना चाहती थी, शिव से प्रेम करती थी, इसलिए सती ने भगवान शिव को चूज किया, और दक्ष इस प्रकार से सती से नाराज भी थे। तो उस समय दक्ष ने कुछ नहीं बोला, परंतु उसके बाद दक्ष जब भी मौका मिलता था भगवान शिव को अपोज करते थे, भगवान शिव को क्रिटिसाइज करते थे। तो एक बार क्या हुआ, बहुत सारे प्रजापति लोग एक यज्ञ कर रहे थे, एक बहुत बड़ा यज्ञ परफॉर्म किया जा रहा था, उसमें सभी बड़े बड़े देवता भी आए, अग्नि देव भी आए, सभी लोग आए, और जब दक्ष वहां पर पहुंचे तो दक्ष सबसे बड़े प्रजापति थे। उनके शारीरिक सौंदर्य इतना ज्यादा था कि पूरे चारों तरफ प्रकाश से भर गया। तो इस प्रकार जब दक्ष का शारीरिक सौंदर्य देखा तो सभी लोग अपनी सीट से उठ के खड़े हो गए। केवल दो लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए और भगवान शिव खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता हैं, तो ब्रह्मा जी को तो खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। दक्ष ने भी स्वीकार किया कि ब्रह्मा जी तो पिता है, पिता को पुत्र के सामने इस प्रकार सम्मान देने की जरूरत नहीं है। परंतु भौतिक चेतना होने के कारण दक्ष ने जब देखा कि शिव भी उनके लिए सम्मान से खड़े नहीं हुए तो दक्ष को बहुत गुस्सा आया। क्योंकि दक्ष सोच रहे थे कि ये शिव तो मेरे दामाद हैं, मतलब मुझसे छोटे हैं, मेरी बेटी के पति हैं, तो जब मैं आया तो शिव खड़े क्यों नहीं हुए। जबकि वास्तविकता यह है कि भगवान शिव ने रियलाइज ही नहीं किया कि दक्ष कब आए, क्योंकि भगवान शिव तो अपनी आंख बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे, भगवान विष्णु का नाम जप कर रहे थे। तो भगवान शिव ने रियलाइज नहीं किया कि दक्ष कब आए। और वास्तविकता में भगवान शिव को दक्ष के लिए खड़े होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि भगवान शिव तो प्रधान देवता है और दक्ष देखा जाए तो टेक्निकली भगवान शिव से नीचे की अवस्था में है। परंतु दक्ष उस चीज को नहीं पहचान पाए, वो केवल शरीर के स्तर पर देख रहे थे कि शिव मेरे दामाद है, तब भी मैं आया तब भी शिव खड़े नहीं हुए। तो ये सुन के दक्ष बहुत नाराज हो जाते हैं। प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में लिखते भी हैं कि वास्तविकता में हम जब किसी को सम्मान करते हैं तो उस व्यक्ति का सम्मान नहीं करते, उसके हृदय के अंदर जो परमात्मा है उसका सम्मान करते हैं, इसलिए हम खड़े होते हैं। इवन जो हम नमस्ते करते हैं वो नमस्ते भी हम परमात्मा को करते हैं, क्योंकि सभी के हृदय में परमात्मा है, इसलिए उस परमात्मा का ध्यान हम करते हैं, परमात्मा को सम्मान करते हैं। तो चूंकि भगवान से ऑलरेडी भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहे थे अपने मन में, तो उनके लिए आवश्यकता नहीं थी दक्ष के लिए खड़े होकर स्वागत करने की। तो दोनों तरह से देखें, चाहे आध्यात्मिक तरीके से देखें चाहे वैदिक तरीके से देखें, दक्ष जो है वो शिव से सुपीरियर नहीं है, इन्फीरियर है, इसलिए शिव की खड़े होने की आवश्यकता नहीं थी सम्मान करने के लिए। परंतु दक्ष ने सोचा कि शिव मेरे दामाद है, इसलिए दक्ष को गुस्सा आ गया कि ये क्यों खड़े नहीं हुए। और फिर दक्ष ने गुस्से में आके बताया कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं कोई ईर्ष्या के कारण नहीं बोल रहा हूँ, परंतु मैं सच्चाई बोल रहा हूँ कि ये जो शिव है इसने जो सामान्य लोगों का जो व्यवहार है उस व्यवहार का उल्लंघन किया है, और ये शिव देवताओं के बीच में बैठने लायक नहीं है। मेरे बेटे के साथ इसने व्यवहार किया और व्यवहार करने के बाद ये मेरा दामाद बन गया, परंतु उसके बाद भी इसके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मैं जब आया तो मेरे सम्मान के लिए खड़ा हो। इस प्रकार से दक्ष ने गुस्सा में शिव के ऊपर बोलना चालू किया कि ना तो ये मेरे सम्मान में खड़ा हुआ, ना तो इसने मुझे वेलकम किया। और फिर दक्ष ने और क्रिटिसाइज करना चालू किया कि ये शिव जो है ये शमशान में रहते हैं और इनके साथ में रहने वाले सभी लोग राक्षस पापी हैं और समय पे स्नान भी नहीं करते हैं, अपने शरीर को धूल और राख से रखते हैं और नर मुंड की माला पहने रहते हैं, और इस प्रकार से नंगे आदमी पागल आदमी की जैसे घूमते रहते हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। इसलिए हो सकता है ये नाम केवल इनका शिव है, बाकी ये शिव नहीं है। शिव का मतलब होता है शुभ, तो इसने बोला ये केवल नाम के लिए शुभ है, बाकी एक्चुअल में ये शुभ नहीं है। इस तरह से दक्ष ने शिव को बहुत क्रिटिसाइज किया पूरी भरी सभा में। और इस गुस्सा के कारण दक्ष ने इवन ब्रह्मा जी का भी अपमान जैसा किया, दक्ष ने ब्रह्मा को नाम से भी नहीं बुलाया, उसने बोला कि परमेष्ठी, बोला कि मैं तो इस शिव से अपनी बेटी का विवाह करना नहीं चाहता था, परंतु ये ब्रह्मांड के जो मालिक हैं परमेष्ठी, इन्होंने बोला इसलिए विवाह किया। तो इस तरीके से उसने ब्रह्मा जी का भी गुस्से में अपमान किया कि ब्रह्मा जी ने भी शंकर जी का जो विवाह कराया वो ब्रह्मा जी की गलती थी, ब्रह्मा जी इतने मैच्योर नहीं थे। इस तरह से ब्रह्मा जी का भी वो अपमान करता है। इस तरह से बोलने के बाद दक्ष ने अपने हाथ और मुंह को धोया और फिर भगवान शिव जैसे उनके सबसे बड़े शत्रु हैं ऐसा मान के दक्ष ने उनको श्राप दे दिया कि ये शिव जो है जो कि देवताओं में सबसे अधम है, अभी से इसको यज्ञ का कोई फल नहीं मिलेगा, यज्ञ में जो आहुति मिलती है वो आहुति शिव को प्रदान नहीं की जाएगी। इस प्रकार से दक्ष ने शिव को श्राप दे दिया। भगवान शिव को तो कोई समस्या नहीं हुई, वो खुश थे, क्योंकि भगवान शिव मटेरियलिस्टिक देवताओं के साथ रहना नहीं चाहते थे, भगवान शिव तो अकेले में भगवान की भक्ति करना चाहते थे। तो जब उन्होंने दक्ष का ये श्राप सुना तो उनको कोई समस्या नहीं हुई, उन्होंने सोचा ठीक है यज्ञ का भार नहीं मिलेगा, मुझे बार बार यज्ञ में नहीं जाना पड़ेगा, मैं अपने कैलाश पर्वत पर बैठ के शांति से भगवान का नाम करूंगा। तो शिव तो अंदर से खुश थे, परंतु दक्ष का इस प्रकार से शाप सुन के शिव के जो पार्षद हैं नंदी और ये सभी, वो बहुत गुस्से में आ गए, ऑफेंड हो गए। और दक्ष तो इतना बोल के असेंबली से बाहर जाने लगे, उनको रोकने का प्रयास किया परंतु वो रुके नहीं। और भगवान शिव तब भी शांत थे, किसी से कुछ नहीं बोला, केवल आंख बंद करके भगवान का नाम करते रहे। परंतु उनके जो प्रिंसिपल एसोसिएट नंदीश्वर, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया, और दक्ष के साथ जितने ब्राह्मण बैठे थे उन सभी ब्राह्मणों को श्राप दिया। नंदीश्वर ने बोला कि जो भी ईर्ष्या के कारण जिसने दक्ष का पक्ष लिया है, उसका सारा ज्ञान चला जाएगा, क्योंकि दक्ष केवल अपने शरीर से और भौतिक भोग करने का इच्छुक है, उसके अंदर कोई अच्छी बुद्धि नहीं है, इसलिए दक्ष को एक बकरे का चेहरा प्रदान किया जाएगा आगे जाके। तो एक श्राप तो दिया कि दक्ष के साथ जो रहेंगे सबका दिव्य ज्ञान चला जाएगा, और जो भी दक्ष को जो दक्ष इवेंचुअली दक्ष जो है उसको बकरे का सर प्रदान किया जाएगा। और फिर ब्राह्मणों को श्राप देना चालू किया, ये उनकी गलती थी। दक्ष को श्राप दिया तो ठीक है, परंतु दक्ष के साथ जो ब्राह्मण थे उनको श्राप नहीं दिया जाना चाहिए था। परंतु जब कोई व्यक्ति गुस्सा में रहता है तो कई बार वो इस प्रकार से करता है कि लिमिट से ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो नंदीश्वर ने सभी ब्राह्मणों को भी श्राप दिया कि जिन्होंने भी भगवान शिव को इंसल्ट किया है, वो सभी भौतिक शिक्षा प्राप्त करके इस संसार में फंस जाएंगे। और चूंकि ब्राह्मणों ने भी, जिन ब्राह्मणों ने दक्ष को सपोर्ट किया है, वो भी अपने ब्राह्मणिकल धर्म को भूल जाएंगे और केवल शरीर को मेंटेन करने के लिए यज्ञ करेंगे। और उन ब्राह्मणों को यह भी पता नहीं होगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वो लोग एक एक हर घर में जाके भिक्षा मांगेंगे और केवल भिक्षा मांग के अपना भोग करेंगे, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार से सभी ब्राह्मणों को श्राप दे दिया जो भी दक्ष के साइड में थे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इस श्राप की जरूरत नहीं थी, हालांकि उन्होंने दक्ष को श्राप दिया, परंतु इस दूसरे श्राप की आवश्यकता नहीं थी ब्राह्मणों को। और जब इस प्रकार से श्राप सुना तो भृगु महाराज, भृगु मुनि बहुत बड़े ब्राह्मण थे, भृगु मुनि बहुत ऑफेंड हुए, और उन्होंने फिर भगवान शिव के पार्षद हैं उन सभी को श्राप दिया। तो इस प्रकार से पूरी असेंबली में एक दूसरे को श्राप देना चालू हो गया। केवल भगवान शिव शांति से बैठे थे, सभी एक दूसरे को श्राप दे रहे थे। दक्ष ने श्राप दिया, उसके बाद नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को श्राप दिया, दक्ष को श्राप दिया, फिर सब ब्राह्मण नंदी को श्राप देने लगे और भगवान शंकर को श्राप देने लगे। ब्राह्मणों ने क्या श्राप दिया कि जो भी भगवान शिव को फॉलो करेंगे वो नास्तिक बन जाएंगे और वैदिक सिद्धांतों को पालन नहीं करेंगे। भगवान शिव के भक्त इतने मूर्ख रहेंगे कि वो भगवान शिव के जैसा बनने के लिए नशा करेंगे, बड़े बड़े बाल रखेंगे और मांस खाएंगे और शराब पिएंगे। और चूंकि वो लोग ब्राह्मणों को ब्लास्फेम करते हैं, इसलिए भगवान शिव के जो भक्त हैं वो ऑलरेडी नास्तिकवाद की तरफ जा चुके हैं। इसलिए हम देखते हैं भगवान शिव के अभी जो भक्त हैं वो भगवान शिव की पूजा नहीं करते, भगवान शिव की पूजा करने की आड़ में नशा करते हैं, मांस खाते हैं, इलिसिट संबंध बनाते हैं और इस प्रकार से वैदिक सिद्धांतों के पालन नहीं करते हैं। तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया था भगवान शिव के भक्तों को इस प्रकार से। जब इस प्रकार से दोनों तरफ से श्राप देना चल रहा था, कल सिंह और काउंटर कल सिंह, उस समय भगवान शिव बहुत दुखी हुए और बिना किसी से कुछ बोले वो वहां से चले गए, उनके शिष्य भी वहां से चले गए। और उसके बाद प्रजापति लोगों ने भगवान विष्णु की पूजा की और यज्ञ संपन्न हुआ। इससे पता चलता है कि यज्ञ के समाप्त संपन्नता के लिए भगवान विष्णु की संतुष्टि जरूरी है। कई बार अगर देवता लोग नहीं भी हो तो भी भगवान विष्णु अगर आ जाते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं। तो यज्ञ संपन्न हुआ, सभी ने गंगा में स्नान लिया और फिर वापस गए। तब से दक्ष और भगवान शंकर के बीच में बातचीत बंद हो गई, ये टेंशन चालू हो गई, लंबे समय तक ये टेंशन चलती रही। इस टेंशन के कारण जो सती हैं, सती अपने पिता के घर भी नहीं जाती थी। तो बहुत समय बाद एक बार दक्ष ने वाजपेय यज्ञ किया। वाजपेय यज्ञ के बाद एक और बहुत बड़ा यज्ञ किया, बृहस्पति सभा। ये इतना बड़ा यज्ञ था, ब्रह्मांड के सभी देवता उनके वहां पे जा रहे थे यज्ञ अटेंड करने के लिए, क्योंकि दक्ष को ब्रह्मा जी ने सबसे बड़े प्रजापति बनाया था। तो इतनी बड़ी पोस्ट होने के कारण दक्ष को बहुत घमंड आ गया था और वो ये सारे यज्ञ कर रहे थे और शंकर जी को इनवाइट भी नहीं करते थे कभी भी। शंकर जी सबसे प्रधान देवता है परंतु दक्ष उनको कभी भी इनवाइट नहीं करते थे। तो जब पार्वती ने देखा कि सभी सभी बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि हर पूरे यूनिवर्स से जा रहे हैं दक्ष के यज्ञ में, पार्वती नहीं, सती ने जब इस प्रकार से देखा, और सती सुन भी रही थी क्योंकि कैलाश पर्वत के ऊपर से वो लोग विमान में जा रहे थे, तो सती उन सब की बातें सुन रही थी और देख रही थी कि उन सबकी पत्नियां जो है कितने अच्छे से ड्रेस होके गई हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। वो अपने पति से बोले, नॉर्मली स्त्रियां जो हैं उनको अच्छा लगता है सोशल फेस्टिवल्स में जाना, नई नई ड्रेस पहनना और अच्छे से डेकोरेट होके सोशल फेस्टिवल में जाना। प्रभुपाद जी लिखते हैं सती को भी इसी प्रकार से इच्छा हुई कि उनके पिता के घर में कोई फंक्शन चल रहा है तो उनको भी जाना चाहिए, अपनी बहनों से मिलेंगे, अलग अलग रिश्तेदारों से मिलेंगे। इस प्रकार से सती की जाने की इच्छा हुई और सती ने भगवान शिव से बोला कि हे भगवान शिव, आपके पिता तो बहुत बड़ा, आपके ससुर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और सारे के सारे दूसरे देवी देवताओं को इनवाइट किया गया है, उनकी पत्नियों के साथ सभी देवता जा रहे हैं, इसलिए हमें भी चलना चाहिए अगर आपकी इच्छा हो। मेरी सभी बहन और उन सभी बहनों के पति भी वहां पे जा रहे हैं, तो मैं भी ड्रेस अच्छे से ड्रेस पहन के वहां पे जाना चाहती हूँ। मैं वो ड्रेस पहनूंगी जो मेरे पिता ने मुझे दिया है। ये एक स्पेसिफिक चीज है। सती ने ऐसा क्यों बोला कि मैं वो ड्रेस पहन के जाऊंगी जो मेरे पिता ने मुझे दिया है? इसका मीनिंग ये है कि शंकर जी इतने ज्यादा डिटेच थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ गहने या कुछ कपड़े कभी भी नहीं खरीदवाए, क्योंकि शंकर जी हमेशा विष्णु भक्ति में रहते थे। तो शादी के समय उनके पिता ने उनको जो वस्त्र दिए थे वो वस्त्र पहन के सती जा रहे हैं। अभी हमें ये समझना होगा कि सती सामान्य स्त्री नहीं है, सती एक्चुअली पूरे भौतिक संसार की माया शक्ति की प्रतिरूप है, माया शक्ति की पर्सोनिफाइड फॉर्म है, परंतु ये लीला के हिसाब से इस प्रकार से चल रहा है। तो सती ने बोला कि मैं वहां पे जाऊंगी और हमारे फैमिली के झगड़े के कारण मैं अपने पिता के घर बहुत समय से नहीं गई हूँ, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ अपने सभी रिश्तेदारों को देखने के लिए। मैं तो जानती हूँ कि आप बहुत उच्च अवस्था में हैं और आपको तो ये सोशल चीजों की आवश्यकता नहीं, आप हमेशा भगवान विष्णु की सेवा में भक्ति में लगे रहते हैं, परंतु मेरी तो इच्छा है, मैं जाना चाहती हूँ। इस प्रकार से उन्होंने अपने पति से बोला। और साथ साथ और बताती हैं कि जब कोई पुत्री देखती है कि उसके पिता के घर में कोई फेस्टिवल चल रहा है तो वो पुत्री कैसे शांत रह सकती है? और चूंकि हमें इनवाइट नहीं किया गया, परंतु ऐसी कोई समस्या नहीं है, अपने पिता के घर में जाने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। हो सकता है हमारे पिता ने इनवाइट नहीं किया हो, परंतु पुत्री तो अपने पिता के घर में कभी भी जा सकती है। इस प्रकार से सती बोल के शांत होती है और बोलती है कि हे पति देव, मेरी इच्छा को पूरा करिए और मेरे ऊपर कृपा करिए। तो भगवान शिव को तो याद था दक्ष ने उनको क्या क्या श्राप दिया था, क्या क्या चीज बोला था, परंतु तब भी भगवान शिव मुस्कुरा के बोलते हैं कि हे प्रिय, ये तो सत्य है कि व्यक्ति अपने मित्र के घर पे या अपने फैमिली के घर पे बिना इनविटेशन के भी जा सकता है, परंतु ये भी सत्य है कि केवल तभी ऐसा करना चाहिए जब वो मित्र हमारे साथ ईर्ष्या नहीं करे, हमारे साथ फॉल्ट नहीं निकाले, या वो शारीरिक चेतना में कार्य नहीं करे। और भगवान बताते हैं कि दक्ष जो है वो पूरी तरह से शरीर की चेतना में डूबे हुए हैं, और मैं मानता हूं कि ऐसी चेतना में जो व्यक्ति के अंदर जो भी गुण होता है, चाहे वो कितना भी तपस्या करे, चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त करे, कितना भी सुंदर हो, परंतु अगर वो आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है तो वो सब कुछ जीरो है, उसके अंदर कोई गुड क्वालिटी नहीं पाई जाती है और वो आध्यात्मिक रूप से ऊंचे लोगों को पहचान भी नहीं पाता है। तो व्यक्ति को ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए जो कि अपने गेस्ट को गुस्से में देखते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति के घर जाते हैं वो हमें गुस्से में देख के हमें इस प्रकार से गलत शब्द बोलता है तो उससे जो हृदय में दुख होता है वो वास्तविकता में वो वाला दुख तीर से मारने से भी नहीं होता है। अगर कोई खराब शब्दों से हमें बोलता है तो उससे ज्यादा दुख होता है, बजाय कि कोई पर्सनली हमें अटैक करे तो। और अगर ऐसा दुख हमारे किसी रिश्तेदार के द्वारा दिया गया हो तो हैंडल करना या टॉलरेट करना बहुत कठिन हो जाता है। तो हे सती देवी, यद्यपि आप दक्ष की पुत्री हैं, परंतु दक्ष अभी आपको पसंद नहीं करता क्योंकि आपकी आपका मुझसे विवाह हुआ है, तो अगर आप बिना मेरे बिना भी वहां जाओगी तो भी वो आपको सम्मान नहीं करने वाले हैं, और चूंकि आप मेरी पत्नी हैं, आपका संबंध मुझसे है, इसलिए जब आप देखेंगे कि आपका सम्मान नहीं करेंगे और मेरे बारे में भी गलत गलत का गलत गलत बोलेंगे तो आपको बहुत दुख होगा, आपकी बहुत इंसल्ट होगी। और क्योंकि जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो हमेशा अपने शरीर और मन में डूबे रहते हैं, वो कभी भी लोगों के आध्यात्मिक ऐश्वर्य को नहीं देख पाते हैं। और चूंकि मैं हमेशा भगवान वासुदेव को प्रणाम कर रहा हूँ, मैं सभी को सभी जीवों को सम्मान करता हूँ, परंतु आपके पिता मुझसे ईर्ष्या करते हैं और आप जब जाएंगे तो मैं श्योरली बोलता हूँ कि वो आपकी इंसल्ट करने वाले हैं, और अगर अभी भी आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं कि वहां पे कुछ गलत होगा आपके साथ, आपको नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से बोल के जब भगवान शिव साइलेंट हो जाते हैं तो सती इस प्रकार से ना सुनने के बाद थोड़ी परेशान हो जाती हैं, वो यहाँ वहां घूमती हैं क्योंकि वो अपने मित्रों को देखना चाहते थे, पर सेम टाइम हस्बैंड उनके पति ने वार्निंग भी दी थी इसलिए वो जाने से डर गई थी। तो इस प्रकार से सती को मना किया गया इसलिए उनकी आंखों से आंसू आने लगे और धीरे धीरे वो एजिटेट होने लगे, और एजिटेट होके बहुत तेजी से सांस लेते लेते वो अकेले अपने पिता के घर की तरफ जाने लगे। और जब भगवान शंकर ने इस प्रकार से देखा तो शंकर जी ने अपने शिष्यों से बोला सती के साथ जाने के लिए। शंकर जी के जो शिष्य हैं मणिमान और सभी, वो सती के पीछे पीछे जाने लगे और उनके साथ कई यक्ष भी जाने लगे। और जब उन्होंने देखा कि भगवान शिव चाहते हैं कि उनकी पत्नी अकेले नहीं जाए, तो उन्होंने सती को नंदी के ऊपर स्थापित किया। और सती की एक चिड़िया भी थी जिसको वो अपने पालतू चिड़िया के समान रखते थे, और साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रोसेशन लेके वो सती को लेके वहां पे गए। भगवान शिव को पता था कि वहां पे क्या होने वाला है इसलिए भगवान शिव वहां पे नहीं गए, अपने स्थान पे स्थित रहे। तो जब सती वहां पे पहुंचती है अपने पिता के स्थान पे और सती वैदिक मंत्रों को सुनती हैं, तो दक्ष के डर से कोई भी ऋषि मुनि या कोई भी देवता सती का सम्मान करने नहीं आते हैं, केवल सती की माँ और उनकी बहनें जो हैं वो उनके पास आती हैं क्योंकि सबको लगता है कि सती शंकर की पत्नी है तो दक्ष को पसंद नहीं आएगा अगर हम सती का सम्मान करेंगे। तो सती ने वहां पे देखा कि कोई भगवान शिव को शिव के मंत्र भी नहीं पढ़ रहा है, यज्ञ में भी शिव के लिए कोई आहुति नहीं है। तो सती को गुस्सा आया, यद्यपि उनकी माँ और बहन ने उनको वेलकम किया परंतु सती ने कोई रिप्लाई नहीं किया। उस सती को अच्छी सीट प्रदान की गई, बहुत सारे गिफ्ट दिए गए परंतु सती ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसने उन्होंने देखा कि उनके पिता ने ना तो उनको वेलकम किया, ना तो अच्छे से शब्द बोला, ना कुछ पूछा। उनके पिता ने पूरी तरह से उनको इग्नोर कर दिया। यद्यपि सती अपने पिता की सबसे प्रिय पुत्री थी परंतु केवल शंकर जी से कनेक्शन के कारण दक्ष ने उनको अपमानित किया और सती इतनी गुस्सा हो गई कि ऐसा लग रहा था कि सती अभी दुर्गा के रूप में बदल के अपने पिता को जला देगी और पूरे ब्रह्मांड को जला देगी क्योंकि सती दुर्गा देवी है। तो सती बहुत गुस्सा में आके जब सती के इस प्रकार के मूड को देखा तो भगवान शिव के फॉलोअर्स बहुत नाराज हुए और गुस्सा हुए परंतु सती ने उनको मना किया। और फिर सती ने अपने पिता को गुस्सा होना चालू किया। सती ने बोला कि भगवान शिव इस संसार के सबसे उच्च व्यक्ति हैं, सबसे महान व्यक्ति हैं, और चूंकि भगवान शिव किसी के शत्रु नहीं है इसलिए सभी लोग उनको पसंद करते हैं, सभी के मित्र हैं वो, केवल आपके जैसे जो नीचे नीचे स्वभाव वाले निचले स्वभाव वाले लोग हैं वो उनसे ईर्ष्या करते हैं। आपका केवल यही बिजनेस है कि आप दूसरे में किस प्रकार से फॉल्ट प्राप्त करें, जबकि भगवान शिव सभी के अच्छे गुणों को देखते हैं, उनको बढ़ा देते हैं। और ये बहुत एस्ट्रोनिशिंग नहीं है कि जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है वो महान लोगों को इज्जत नहीं दे पाता है। आप मेरे पति को अशुभ समझते हो परंतु उनका भाई उनका नाम ही शुभ है। और आपको क्या लगता है कि भगवान ब्रह्मा जो है कोई मूर्ख है क्या? इस प्रकार से सती गुस्सा में बोलते हैं कि आप तो शिव के लिए ऐसा बोल रहे हैं परंतु आपको क्या लगता है कि ब्रह्मा जी मूर्ख हैं जो कि भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हैं? संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वो भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, भगवान शिव के चरणों में जो फूल बहते हैं उनको अपने सिर पर रखते हैं। अगर कोई भगवान विष्णु और उनके रिप्रेजेंटेटिव की कोई ब्लास्फेमी सुनता है तो उसको अपने कानों को बंद करके भाग जाना चाहिए। अगर वो दूसरे व्यक्ति को अगर वो दूसरे व्यक्ति को पनिश नहीं कर सकते हैं तो व्यक्ति को नहीं अगर व्यक्ति अपने कान को बंद करके नहीं भागता है तो दूसरा तरीका है जो इस प्रकार से भगवान की बुराई कर रहा है उसकी जीभ को काट देना चाहिए, और तीसरा तरीका है कि वो भी नहीं कर पाते तो अपने शरीर का त्याग कर देना चाहिए। और सती ने बोला कि चूंकि मैं आपकी पुत्री हूं, मैंने आपके इस आपके शरीर से जन्म लिया है, तो मैं पुत्री होने के नाते अपने पिता को तो नहीं मार सकती हूँ, परंतु अभी मुझे इतना खराब लग रहा है कि मैंने क्यों आपके आपके शरीर से जन्म लिया है, इसलिए मैं अपने इस शरीर को खत्म कर दूंगी। मैं आपके साथ संबंध रखना नहीं चाहती, और आपके संबंध का फल स्वरूप जो ये शरीर है, इस शरीर को मैं एंड कर दूंगी। ऐसा सती ने बोल के वहीं पे यज्ञ की अग्नि नहीं, वहां पे बैठ के उत्तर दिशा की तरफ उन्होंने आंख बंद की और ध्यान लगाया और अपने शरीर के अंदर की अग्नि को प्रज्वलित किया, और भगवान शिव का ध्यान करते करते शरीर ने अपने देह को त्याग किया। जब इस प्रकार से सती ने देह को त्याग किया तो ये सुन के, ये देख के पूरे ब्रह्मांड के लोग अचरज करने लगे और दुख मनाने लगे कि इतनी बड़ी स्त्री जो है उन्होंने इस प्रकार से क्यों किया। और कई ऋषि मुनि दक्ष के बारे में बोलने लगे, और साथ साथ जो शिव के जो फॉलोअर्स थे वो दक्ष के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। इसके बाद आगे जो होगा वो हम कल डिस्कस करेंगे, इसके आगे जो सेक्शन प्रारंभ होगा वो कल हम डिस्कस करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम कल इसी टाइम पे 7:30 पे हम स्टार्ट करेंगे, फिर से इसके आगे डिस्कस करेंगे। कल शायद ये सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसके बाद ध्रुव महाराज की स्टोरी प्रारंभ होती है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।